ओम शांति। विचित्र बाप ने जब इस सृष्टि के पुनर्निर्माण की बात सोची तो उसने विश्वकर्मा की भूमिका को बेजोड़ और सटीक तरह से निभाया। जब वह विश्वकर्मा की भूमि निभा रहा था तो उसने विभिन्न प्रकार की रचनाएं रची। उन सभी रचनाओं में एक रचना ऐसी भी चाहिए थी जो भगवान यानी कि उस विश्वकर्मा के सभी कार्यों को अक्षरतः स्पष्ट करके जन जन तक पहुंचाने के कार्य निमित्त बने। ऐसे निमित्त सेवा पुरुषों में एक नाम आता है, आदरणीय भ्राता रमेश भाई जी का, जिन्होंने इस यज्ञ में अपनी सेवा ददीची ऋषि मिसल दी है। ज्ञान के भंडार परम तपस्वी भ्राता जी का हम स्वागत करते हैं। आपका जन्म गुजरात में हुआ लेकिन शिक्षार्थ आप मुंबई गए। आपने 1957 में चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और प्रैक्टिस शुरू की। पिछले 50 वर्षों से इस बेहद के यज्ञ में अपनी ददीची ऋषि मिसल सेवा दे रहे हैं। वर्तमान में आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल सोसाइटी के फाउंडर सेक्रेटरी हैं। ज्यूरिस्ट विंग और स्पार्क विंग के आप चेयरपर्सन हैं। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। आपके बहुमुखी लेखन में एक अनुपम कृति है पवित्र धन, जो जीवन में अर्थशास्त्र और आध्यात्म के गहन संबंध को प्रदर्शित करती है। आपने अपने लेखन, नाटक एवं नृत्य नाट्य द्वारा बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। अभी हम आदरणीय भाई साहब से सुनेंगे मुरली की गुह्यता। आदरणीय भाई साहब,
ओम शांति। आप सबको पहले नया वर्ष का हैप्पी न्यू ईयर जैसे लिखा हुआ है सामने, और कल बाबा ने भी सबको बताया मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो नया वर्ष। इस नया वर्ष के लिए बाबा ने कल जो मुरली चलाई उसके प्रति हरेक का अपना दृष्टि बिंदु होगा। जैसे आज सुबह एक भाई आया मेरे को कहने लगा कल बाबा ने बहुत रमणीक मुरली चलाई। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हरेक का अपना अपना दृष्टिकोण है। मुझे मौका मिला हुआ है आप सबके सामने कल की मुरली के बारे में मेरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का। आपको मालूम, आप मानो न मानो आपकी मर्जी है, मेरी बात सुन करके मेरा क्लास पूरा हो जाएगा उसके बाद आप विचार करना कि मैं जो कह रहा हूं कल की मुरली के बारे में मुरली के आधार पर वो कहां तक आपको मंजूर है, और अगर मंजूर है तो कहां तक इन बातों को अपनाएंगे और कहां तक इसके आधार पर ईश्वरीय सेवा में चार चांद लगाएंगे। मैं पहले आपको खाली बैकग्राउंड बता दूं। समय के हिसाब से बाबा के लिए बाबा का रथ जो है 7:40 को संदल पर बैठ गया, गीत बजना शुरू हो गया। 7:45 पांच मिनट के अंदर गुलजार दादी बाबा के पास वतन में पहुंच गई। 3 मिनट के अंदर 7:48 पर अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई और बाबा ने 7:58 माना 8 में 2 मिनट कम थी, मेरी घड़ी के हिसाब से है, मेरी घड़ी और इस घड़ी के अंदर 2-3 मिनट का फर्क है। मेरी घड़ी के हिसाब से ये सारे का मूला वो है। बाबा ने मुरली मतलब चलाई 7:58 से चलाई और 9:02 माना 1:04 तक जो मेन ऑपरेटिव पार्ट जो मुरली का है वो है। उसके बाद मुरली बहन ने बताया कि बाबा सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा का है, वो 9:02 को सुनाया। उसके बाद डबल विदेशी, हाँ मुरली बहन ने बताया कि 500 जितने डबल विदेशी आए हुए हैं उसके लिए 9:10 बाबा ने शुरू किया। जूरिस्ट और आईटी विंग वालों के साथ बाबा ने 9:14 को शुरू किया और मुरली आदि का कारोबार 9:25 को समाप्त हुआ। दादियाँ और हम तीन भाई आदि जो भी है स्टेज पर गए, दीपक प्रज्वलित किया, फिर भोग लगाया, केक कटिंग हुआ, ये सारा काम हो गया और 10:10 को बाबा हम बच्चों से विदाई लेकर के फिर अव्यक्त धाम में वापस चले गए। तो इस प्रकार से ये समय की सूची है। समय के अंदर बाबा ने क्या क्या काम किया है, क्या क्या बताया हुआ है, उसके बारे में सोचने का है। मैं उसका पहले बैकग्राउंड बता दूं, मेरा दृष्टिकोण का। आप जानते हैं हम सब विश्व के सेवाएं करते हैं। बाबा ने भी कल 4 सब्जेक्ट की बात कही, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सेवा के अंदर आप जानते हैं हम विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। 7 दिन का कोर्स करते हैं, लिटरेचर देते हैं, लिटरेचर से पढ़ाते हैं, प्रदर्शनियां करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्लाइड शो करते हैं, अनेक मेडिटेट करते हैं, अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं, ये तो आपको मालूम है। और वर्ष के आखिर में हम लोग सेवा का समाचार, स्टेटिस्टिक्स जिसको कहते हैं, वो भी प्रसिद्ध करते हैं। ये जितनी भी सेवाएं अभी तक हम सब करते रहे हैं, सेवा का 2 मुख्य विभाग है। जैसे स्कूल होती है, आप सब हम सब स्कूलों में पढ़े हुए हैं, स्कूल के अंदर भी ऐसा होता है, पहले प्राइमरी होता है, सबको मालूम है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी होता है, फिर हायर सेकेंडरी होता है, फिर जूनियर कॉलेज होती है, फिर सीनियर कॉलेज होती है और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, फिर एमफिल, पीएचडी आदि आदि होकर करके आगे की पढ़ाई होती है। इस प्रकार से अब तक ईश्वर सेवा के अंदर फाउंडेशन के रूप में जो भी हमने सेवा किया वो प्राइमरी लेवल के फाउंडेशन की सेवाएं हैं, क्योंकि फाउंडेशन नहीं मजबूत होगा तो उसके ऊपर की इमारत जो है, उसके ऊपर का मकान जो है बनना इम्पॉसिबल, और बनेगा तो भी अर्थवेग आदि आदि ऐसी माया की थप्पड़ लगेंगी, हाँ तो मकान गिर जाएगा। तो इसलिए प्राइमरी लेवल की बात जो है, फंडामेंटल लेवल की, प्राइमरी माना ही फंडामेंटल, फंडामेंटल लेवल की बात जो है वो हम सब ईश्वरीय सेवा अब तक करते आए। कल बाबा ने यह ईश्वरीय सेवा जो प्राइमरी लेवल की जो हम करते हैं, फंडामेंटल लेवल की जो करते हैं, उसके अंदर अभी उससे आगे जाने का। कई लोग क्या समझते हैं, 10 फार है, 9 फर्दर, यहां तक गए उसके आगे कुछ जाने का नहीं, ऐसा समझ करके यहां तक ही ईश्वरीय सेवा को सीमित करते हैं। ऐसी बात नहीं है, ईश्वरीय सेवा का फील्ड बहुत 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 विशाल है, हम लोग समझ नहीं सकते इतना ईश्वरीय सेवा का होराइजन जो है, क्षितिज जो है, इतनी विशाल है जिसको हमने समझा ही नहीं है। और इसके कारण क्या हो गया है, कल बाबा ने एक नई क्षितिज, नई डायरेक्शन, नई विधि, नया कार्यक्रम हम सबको सामने, आप सबके सामने इस नए वर्ष में दिया हुआ है। बाबा का जो भी मुरली के अंदर का बात, मुरली के अंदर की बातें थी वो गुप्त थी, परंतु बाबा हमेशा ही कहते हैं मेरा गुप्त इशारा होता है और मेरा ये गुप्त इशारा जो बच्चे समझने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि पहले अभी तक जो किया वो ठीक नहीं किया, वो किया वो अच्छा किया, अब उनसे आगे क्या, जैसे स्कूल के अंदर पढ़ाई वो पूरी हो जाए उसके बाद कॉलेज में जाना होता है, वो आगे की पढ़ाई है, आगे की पढ़ाई हम समझे ही नहीं, और स्कूल की पढ़ाई को समझ करके इति श्रीमद् भागवत पुराण स्कंदे इस प्रकार के पूरा करके वहां से ही अभ्यास पूरा करते, वो अलग बात है। ईश्वरीय सेवा के अंदर भी एक नई बात है, अब तक हमने मैसेज ओरिएंटेड सेवा किया है, सबको संदेश दिया, आज भी आप सबने सुना होगा हाँ कि इतने लोग जो है हाँ पिछले महीने के पिछले दिसंबर मास में म्यूजियम में आए, इतना इधर आए इधर आए, हमारे पास सोमनाथ का भी संख्या आई, आपके पास भी सुनने में आया होगा पिछले मास 4,56,000 लोग आए, ऐसे ऐसे सब जगह पर जो आए, इन सबको 4,56,000 लोगों को हमने संदेश दिया। आप समझे मेरी बात को, संदेश देने की बात जो है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस, जिसका लक्ष्य अब तक की ईश्वरीय सेवा का लक्ष्य था संदेश देने का, संदेश देने का लक्ष्य के आधार पर हम लोगों ने किया सेवा किया। हम सब जितने भी यहां बैठे हुए हैं वो मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस के रिजल्ट के स्वरूप ही है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि संदेश मिलता है पर हम स्वीकार नहीं कर सकते। मैं अपना जीवन का ही अनुभव बताऊं कि जब तक मैं बाबा का परिचय मैं 52 में आया, बाबा को मैंने देखा 52 में देखा, 53 में देखा, 57 में बाबा हमारे निमंत्रण पर बॉम्बे में आए, सब कुछ था, और बाबू में हम आए 61 में, तब तक बाबा का ज्ञान का संदेश मिला था, बाबा का ज्ञान समझते थे क्या क्या है, नई नवीनता क्या है, वो सब कुछ होते हुए भी मैं नई बाबा की बातों को स्वीकार नहीं कर सकता था। मैं हमेशा ही कहता था कि बाबा जो ब्रह्मा बाबा जो है वो मेरी माता जी के गुरु हैं, मैं बाबा का राजयोगी बच्चा नहीं परंतु सहयोगी कोऑपरेटिव सोल था। यहां पर आबू में आए हम लोग, आए परिवार सही था, मैं उषा जी आए, मेरे माता जी आई, बड़ी बहन छोटी बहन है सब आए, हम लोग आए, विदाई ले रहे थे तो वहां पर ऊपर में पांडव भवन के पीछे के गेट से बाबा विदाई देने के लिए आते हैं, वहां पर एक बनियन ट्री है, वट वृक्ष है, बनियन ट्री के नीचे तक बाबा विदाई देने के लिए आते थे, और भी मधुबन निवासी जो भी थे वहां वो आते थे, बाबा भी आए, बाबा ने जो है ऐसे बाबा या जेब में हैंडकरचीफ रखते थे, रुमाल रखते थे, तो बाबा ने वो रुमाल निकाला और बाबा की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए, प्रेम के आंसू आ गए, तो इसके आधार पर हमने रास्ते में उषा जी और हमने बात किया कि हमने कहा कि देखो ये ब्रह्मा बाबा, हमने निकलने के टाइम पर भी तब तक भी यही कहा है कि आप हमारे माता जी के गुरु हैं, गुरु भाव के दृष्टिकोण से भक्ति भाव के दृष्टिकोण से हम उनको स्वीकार करते थे, परंतु बाबा इतना महान है कि इन्होंने हमको इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया, और इतने स्नेह दिया कि सुबह मुरली चलाई मोहजीत बनने का, और मोहजीत जीतने की बात करने वाले महात्मा जी बाबा जी शिव ब्रह्मा बाबा शाम को विदाई देने के टाइम पर उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भी आ सकते हैं, अर्थात मोह और प्रेम के बीच में जो सूक्ष्म भेद है दुनिया वाले वो समझते नहीं है, इसलिए क्या होता है कई बार मोह को प्रेम समझ लेते हैं और प्रेम को मोह समझ लेते हैं और उसके कारण अनेक प्रकार की बातें समाज में उत्पन्न हो जाती है। तो हमने उनको कहा उषा जी को, हमने कहा अब तक हमने इनका ज्ञान सुना उसके ऊपर हम बॉक्सिंग करते थे, डिबेट करते थे पंडितों के माफिक, बहुत डिबेट करते थे, हमने ब्रह्मा बाबा को भी कहा कि आपके परमात्मा तो ड्रामा के अंदर बंधा हुआ है और हमारा परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे कैसा भी चाहे वो कर सकता है, इतना बंधन मुक्त हमारा परमात्मा है शास्त्रों का, और आपका परमात्मा तो ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। तो बाबा ने मुझे हंसते हंसते कहा था बच्चे काश ऐसा कोई तुम मानते हो इस प्रकार का परमात्मा होता, परमात्मा ऐसा है नहीं, परमात्मा भी ड्रामा जो है परमात्मा वो ड्रामा के बंधन में ही है, उसके ऊपर और कोई परमात्मा नहीं है। इस प्रकार से काफी डिबेटें होती रहती थी, चर्चा होती रहती थी, और अपने विचारों में हम अपने मक्कम थे, बाबा अपने विचारों में बताते रहते थे। फिर बॉम्बे जाकर के हमने लोगों ने लकी किया कि ये ज्ञान को हम सुनते रहते हैं, अब उसका अनुभव करें। राजयोग हम सुनते रहते थे, राजयोग क्या है, परमात्मा को याद करना, ये सारी बातें हम सुनते रहते थे परंतु राजयोग करते नहीं थे। तो हमने बॉम्बे जाकर के हमने और उषा जी ने लकी किया कि बाबा का ज्ञान का अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें, एक्सपीरियंस करें। बाबा से संदेश भेजा, बाबा ने 7 दिन का संदेश दिया कि सुबह 5 बजे वॉटल मेंशन सेंटर में आ जाओ और 5 बजे से सेवा। हम योग से 5 से 6 योग करना शुरू किया और 1 घंटा जो 7 दिन के लिए योग किया, जो 8 साल 9 साल के अंदर जो हम अनुभव नहीं कर पाए, जो हम स्वीकार नहीं कर पाए, वो 7 दिन के अनुभव के आधार पर हमने स्वीकार किया कि यह ज्ञान परमपिता परमात्मा का है और परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं। तो वो जो है मेरा खुद का जिनका जीवन का अनुभव यही है कि मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस के ये जितनी इफेक्टिव है, इनसे ज्यादा 1000 गुने ज्यादा इफेक्टिव एक्सपीरियंस ओरिएंटेड गॉडली सर्विस है। अनुभव और प्रयोगात्मक, प्रयोग करो अनुभव करो, प्रयोगात्मक एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटल गॉडली सर्विसेज, ये नई प्रकार की ईश्वरीय सेवाएं बाबा कहते आए हुए, अभी तक हम करते नहीं थे। हम समझते थे कि ये जो प्रदर्शनियां किया, ये कॉन्फ्रेंस किया, ये सारी बातें जो किया, विंग्स का सेवा किया, यूथ की सेवा किया, इस प्रकार से बहनों की माताओं की सेवा किया, जुरिस्ट की सेवा किया, इस प्रकार की सेवा वही सेवा का अंतिम लक्ष्य है, इस प्रकार का समझ करके हम चलते थे। परंतु इसका इतना रिजल्ट जो आया इनसे कई गुना ज्यादा। कल बाबा ने नई जो ईश्वरीय सेवा बताई हुई है मैसेज ओरिएंटेड के बदली में एक्सपीरियंस ओरिएंटेड। तो जैसे मैं आज सुबह मुझे किसी ने कहा बाबा ने कल रमणीक मुरली चलाई, मैंने कहा भाई साहब ऐसी बात नहीं है, कल बाबा ने रमणीकता से मुरली चलाई वो और बात है, पर वास्तव में चलाई है कल की मुरली है क्रांतिकारी मुरली। अगर उसकी गहराई में जाकर के समझे तो ईश्वरीय सेवा के अंदर कल की मुरली के द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। वो कौन कर सकेगा, जो इस मुरली का हृदय जो है, हार्ट है, हाँ जो गहराई जो है, हाँ गहराई में जाकर, जैसे बाबा ने एक मुरली में भी कहा हुआ है समुद्र के नीचे में ही रत्न छुपे हुए होते हैं, इस प्रकार से उसकी गहराई में जाकर के उसका अनुभव करें। कल बाबा ने सारी जो मुरली चलाई हुई है उसके ऊपर आप देख लीजिए, मैं अभी आपको मुरली के थ्रू लेके चलूंगा, पर आप सोचना कि इस प्रकार से अनुभव कराने की बात बाबा ने जो कही हुई है। हाँ अनुभव करो, अनुभव कराओ, आपने जो बाबा ने और ऑपरेटिव पार्ट जो मुरली का वो यही है। कल की मुरली का ऑपरेटिव पार्ट संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना और संतुष्टता की शक्ति से विश्व में भी संतुष्टता का वाइब्रेशन फैलाना, संतुष्टता के वाइब्रेशन फैलाना, खुद भी हम संतुष्ट रहे औरों को भी संतुष्ट करें। संतुष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको अनुभव कराना पड़ेगा और अनुभव के लिए हम बाबा ने सारी मुरली चलाई हुई है। तो और उसी दृष्टिकोण से आप मुरली पढ़ना और उसके आधार पर हमारे यहाँ यश, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे बहन भाई जो है ना बाबा की मुरली के पहले आ जाते हैं और आने के बाद फौरन दूसरे दिन चले जाते हैं, मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। क्योंकि पहले आते हैं तो पहले की मुरलियाँ आदि के आधार पर जो भी बातें होती है वो यहाँ के क्लासों में चलाई जाती है, तो बाबा जिस दिन आते हैं मुरली चलाते हैं उसके बाद उसमें जो नवीनता जो होती है उसके अंदर जो ऑपरेटिव डायरेक्शन बाबा ने जो कहे हुए होते हैं उसके आधार पर क्या करने का है उसके बारे में यहाँ पर, क्योंकि सब दूसरे दिन चले जाते हैं। कल की बात देखिए, कल सारा हॉल भरा हुआ था, हम 20-25 हजार लोग थे, आज उसमें से 25% तो रात को ही चले गए, आज दिन में चले जाएंगे, आधे दिन में चले जाएंगे। और उसके कारण क्या हो जाएगा कि जो मुरली का जो गुह्यता है, मुरली की जो हार्ट है उसको समझे बिना सुने बिना चले जाएंगे। और क्लासेस होते हैं उसके अंदर बैठ लेते हैं, टीचर्स तो 99% कभी यहाँ बैठती नहीं है, तो इस प्रकार से ऐसा होता है। इसलिए वास्तव में मुरली के बाद के दिनों में यहाँ रहना चाहिए, और उसकी मुरली की जो गुह्यता है, जो बाबा ने समझाई है, उसकी गुह्यता में जा करके उसको अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे ये सारे अभी इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इसके ऊपर सेमिनार होना चाहिए, इसके ऊपर जैसे गीता का भगवान के लिए हम सेमिनार करते हैं, अभी और भी बातों के लिए सेमिनार किए, इस प्रकार से इसके ऊपर सेमिनार करना चाहिए कि अनुभव करने और कराने की एक्सपीरियंस, प्रयोग करने और कराने की सेवा क्या है, कैसे हो सकती है, कौन कर सकता है, इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है और उसकी रिजल्ट क्या हो सकती है। ये एक बहुत नया चैप्टर ईश्वरीय सेवा के अंदर है, नया अध्याय, जैसे गीता में है ना अध्याय, इस प्रकार से अब तक जो है संदेश देने का अध्याय था, संदेश देने का लक्ष्य था, संदेश देने का पुरुषार्थ था। अब कल से बाबा ने नए वर्ष के लिए बाबा ने लास्ट में भी कहा ना, आप देखिए लास्ट में भी यही कहा, इस नए वर्ष में कुछ न कुछ नवीनता अपने में लानी है, जो अभी तक परिवर्तन नहीं किया है मुश्किल लगता है, हाँ वह इस नए वर्ष में करके समाचार लिखना, अपने को भी निर्विघ्न बनाना और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाने में सहयोगी बनना, यह अनुभव कराने के आधार पर, संदेश देने के आधार पर नहीं, परंतु अनुभव करने के आधार पर, परमात्मा की शक्तियों के अनुभूति के आधार पर क्या हो जाएगा, हम खुद अपने लिए निर्विघ्न बनेंगे और औरों को भी निर्विघ्न बनाएंगे। संदेश देने के अंदर ये सब बातें नहीं होती थी, हम भी निर्विघ्न नहीं, तोते के माफिक बोलते थे, तोते के माफिक पढ़ाते थे, और इस प्रकार से होता था, परंतु यहाँ तो क्या है, हाँ अनुभव करना है, हमें निर्विघ्न बनना है और निर्विघ्न बन करके औरों को निर्विघ्न बनाना है, इस प्रकार से हम एक्सपीरियंस ओरिएंटेड गॉडली सर्विस करना है। इसके लिए सेमिनार करने चाहिए इसके, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक्सपीरियंस ओरिएंटेड गॉडली सर्विस क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्योंकि मुझे ये मुरली का कारोबार करना है, परंतु हमारे और जो बहन भाई जो है, हमारे दादियां, आज बहन जो है, तो मेरी दादी, जानकी दादी, ये सबको हमारा अनुरोध है कि कल के मुरली के आधार पर एक्सपीरियंस कराने का, अनुभूति कराने का योग क्या किया जाए, अनुभूति करने से क्या फायदा हो सकता है, कैसे अनुभूति करा सकते हैं। अनेक प्रकार के ईश्वरीय सेवाएं जो है उसके अंदर कल बाबा ने अनुभूति का कारोबार करने का बताया, और उसी दृष्टिकोण से अभी आप पढ़िए, सुनिए बाबा की मुरली, कि ये सारी मुरली क्या अनुभूति करने और कराने के बारे में बाबा ने कही है या नहीं, वो दृष्टि बिंदु सामने रखिए। जैसे होता है ना, कांच होता है, चश्मे होते हैं, तो उसी हिसाब से दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता है, ग्लासेस बदली करेंगे तो बदली हो जाएगा, दृष्टि बिंदु बदली हो जाता है, इस प्रकार से इसके अंदर भी बदली करना पड़ेगा, जैसी हमारी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि, हम उसी दृष्टिकोण से कल की मुरली पढ़े, सुने, समझे और धारण करें कि हमको अभी दुनिया वालों को सिर्फ संदेश नहीं देना है परंतु अनुभव कराना है। ये बात का अनुभव मुझे बाबा ने पहले भी एक बार कराया था, जब मैं यहां से मेरे बाबा से विदाई ले रहा था, मैं जा रहा था द्वारका और सोमनाथ जा रहा था, तो मैंने बाबा को, कबीर के बाप दादा को कहा कि बाबा मैं आपकी कर्मभूमि और जन्मभूमि में जा रहा हूं, क्योंकि आपने ईश्वरीय सेवा के अंदर द्वापर युग से भक्ति की शुरुआत जहाँ की है वो सोमनाथ में जा रहा हूँ, और कर्म कृष्ण की दुनिया के लिए कहते हैं द्वारका सोना की थी द्वारका हमें कृष्ण से, इसलिए वहाँ की कर्मभूमि और आपकी हम भक्ति मार्ग की जन्मभूमि इसके वहाँ जा रहा हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे वहाँ जाते हो तो अभी वहाँ ऐसा म्यूजियम बनाना जिसके आधार पर अनुभूति हो सके, ये शब्द बाबा ने यूज किया, बाबा ने कहा कि अनुभूति कराने का ऐसा संग्रहालय बनाना। तब से हम लोगों ने आपस में सोचा कि अभी तक के जितने भी हमारे म्यूजियम थे उस तक उस दिन तक 60 जितने म्यूजियम बने हुए थे वो सब में संदेश देने की बातें थी। बाबा ने नवीनता करने के लिए बताया और मुझे नवीनता का प्रेरणा दिया कि वहां पर अनुभूति कराने की सेवा में म्यूजियम बनाना। तो म्यूजियम में भी अनुभूति कराने की म्यूजियम बन सकते हैं, इसके अनुभूति का रूप में हम लोगों ने सोमनाथ में ट्राई किया। हमारे यहाँ रमेश भाई आज सुबह इंजीनियर यहाँ आए थे, मिले थे, उन्होंने मेहनत किया, हमारे मोहन सिंगल ने किया, छाया भाई ने किया, सबने मेहनत करके किया और सोमनाथ का म्यूजियम जो है अनुभूति कराने का म्यूजियम बना। तो ये अनुभूति करने कराने के लिए विधि क्या हो सकती है, आज हम सबको विधि सीखनी पड़ेगी। प्रदर्शनी समझाने की विधि सीखी, 7 दिन का कोर्स कराने की विधि सीखी, हर प्रकार राज्योग सिखाने की, राज्योग कॉमेंट्री करने की सिखाई और हर प्रकार की ये सारी बातें हम मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस की सब प्रकार की विधियां हमने हमारे सभी बहन भाइयों को सिखाई। आज से नए वर्ष के अंदर बाबा ने हम टीचरों को, हमारे टीचर्स बहनों को, हम टीचर्स भाई बहनों को ये जिम्मेदारी दिया है कि अभी आपको अनुभव कराने की सेवा करने की है। अंग्रेजी में भी कहते हैं एन आउंस ऑफ एक्सपीरियंस इज मच मोर बेटर देन ए टन ऑफ मैसेजेस। एक टन भर करके मैसेज एक साथ में रखो, एक साथ एक क्षण का अनुभव रखो। शक्कर कितनी भी, शक्कर के बारे में मैं आपको कितना भी बताओ, मीठी होती है, ये होता है, वो होता है, आप उसके समझ नहीं सके, मीठा क्या होता है वो समझ नहीं सकेंगे। परंतु शक्कर का एक भी दाना लेकर के जीभ पर रखो तो आपको मालूम पड़ेगा शक्कर में जो स्वीटनेस जो मिठास जो वो क्या है। मिठास के बारे में कितना भी मैं अनुभव कर अपने ज्ञान दो, संदेश दो, मिठास ऐसी होती है, मिठास ऐसी होती है, आप समझ नहीं सकेंगे। परंतु एक दाना भी अगर आपने अपने जीभ पर रख दिया, उसका अनुभव किया, तो आपको मालूम पड़ जाएगा स्वीटनेस क्या है। इसी प्रकार से ईश्वरीय ज्ञान की स्वीटनेस, ईश्वरीय ज्ञान में आध्यात्मिक शक्ति, क्रांति, बल, फोर्स वो क्या है, उसकी आप अनुभूति करा लो तो अनुभूति करने से क्या हो जाएगा, लोग स्वीकार करेंगे कि ये परमात्म शक्ति महान शक्ति है, बहुत महान शक्ति है, श्रेष्ठ शक्ति है। ये कब लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि बाबा ने भी कल भी कहा समय की सूचना का भी है, सारी बातें आएंगी मैं बताता रहूंगा, तो आप सुनिए उसी दृष्टिकोण से। आप कल की मुरली फिर से पढ़िए, आप घर में जाएंगे दोपहर में आराम करें, शाम को भी पढ़े उस दृष्टिकोण से, इस दृष्टिकोण से मुरली पढ़िए कि हमें अब संदेश देने का, अनुभूति कराने का, संदेश छोड़ दीजिए अभी, अनुभूति कराने का, प्रयोग करने का, इस प्रकार से काम करना चाहिए। अभी तक फॉर एग्जाम्पल अभी तक हम सबको कहते आए कि इस प्रकार से करो, इस प्रकार से करो, प्रयोग नहीं करते थे। मैं आपको बताऊं, हम लोग 74 में लंदन में थे, 2 मास हम रहे थे, तो लंदन में एक माता आई, माता आई दादी, उन्होंने कहा कि हमको क्लास करना है। तो वो माता ने कहा कि मेरे पास तो दोपहर में 2 से 3 ही टाइम है, मैं ऐसा ये टाइम में नहीं आ सकती हूँ। मुझे आंटी दादी से उन्होंने वहां पर इन्होंने मुझे कहा कि रमेश दोपहर में तो हम सब बहनें आराम थोड़े करती हैं, आप आराम नहीं करते हो, तो दोपहर में ये 2 से 3 इस बहन को 7 दिन का कोर्स कराइए। मैंने कहा जैसे जैसी आज्ञा हो दादी, उसमें क्या है। मैं उस बहन के साथ में बैठा, वहां पर कोर्स कराने का रूम था उसमें, मैंने उस बहन से पूछा कि आप क्यों यहां आए हो, क्यों यहां 7 दिन का कोर्स करने के लिए आए हो। वो बहन ने मुझे बहुत एक विचित्र बात कही। उस बहन ने कहा कि, मैंने कहा कि आपको, उसने कहा मैं आत्महत्या करने से पहले, मेरे को किसी ने कहा कि तुम आत्महत्या बाद में करना, पहले ब्रह्मा कुमारी में जाओ और वहां का ज्ञान सुनकर के उसके बाद तुमको लगे कि आत्महत्या कर ली तो भले करो, अगर नहीं तो ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के आधार पर जीवन को सुखी बना लो। तो इसलिए जीवन को सुखी बनाने के लिए और आत्महत्या के बदले में शांत जीवन कर सको, इस प्रकार से आई हुई हूं। तो मैं तो अपना भारत का बैकग्राउंड था, इसलिए मैंने कहा, माता को पूछा कि आपको क्या दुख है, तो क्या मेरे को कोई दुख नहीं है। मैंने कहा आपको भारत के हिसाब से क्या होता है, माताओं को बच्चे नहीं होते उसका बहुत दुख होता है। मैंने कहा आपको बच्चे नहीं है क्या? क्या नहीं, दो बच्चे हैं, दोनों अमेरिका में हार्वर्ड में पढ़ते, बहुत अच्छे होशियार है, बहुत कुछ है, मेरे को बच्चों का बहुत अच्छा सुख है। तो मैंने कहा कि पैसे का? तो कहा नहीं नहीं मेरे पास पैसे का भी दुख नहीं है। मेरा पति एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, और इसलिए मुझे पैसे का भी दुख नहीं है। मैंने कहा आपका पति का? तो कहा पति का भी दुख नहीं है, मेरे को पति भी बहुत मेरा प्रेम देता है, सब कुछ करता है, सब सुख देते हैं। तो मैंने कहा तो फिर आपको दुख किस बात का है, किस बात से कारण आप आत्महत्या करने के लिए निकली हुई हो? तो कहा मैं अकेली हो जाती हूँ, बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, मेरा पति वर्कोहॉलिक है, सुबह 7 बजे ऑफिस में चला जाता है, रात को 11 बजे तक आता है, और हमारे यहाँ अमेरिका में तो लंदन में तो आप जानते हैं खाना पीना बनाने में 10-15 मिनट ही लगता है, 10-15 मिनट में खाना बन जाता है, सुबह का खाना बन जाता है, दोपहर का खाना बन जाता है, रात का खाना बन जाता है। मैं सारा दिन करूँ क्या, मैं सारा दिन करूँ क्या, तो मैं अकेली हो जाती हूँ, अकेली हो जाती हूँ, अकेली अकेली रह करके मैं थक गई हूँ। ये वो माता का दिल की दर्द था, तो मैं अकेली रह करके थक गई हूँ। तो इसलिए मुझे मेरे मन में नक्की किया कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो मैंने समझ लिया और मैंने बाबा को कहा कि बाबा मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी आपने जिम्मेदारी रख दी है कि इस माता को, इसको जो चाहिए, अकेलापन जो है उसको अकेलापन दूर न हो जाए, हाँ, और ये आत्महत्या करने न लगे, इसके लिए अगर मैं फेल हो गया तो ये माता आत्महत्या करेंगी और उसका पाप मुझे भी थोड़ा लगेगा। इसलिए बाबा को मैंने कहा कि बाबा मुझे ऐसा रास्ता दिखाओ मैं क्या करूं। तो वहां पर मैंने उनको अनुभूति का ही एक्सपीरियंस का जो कल की बाजवान मुरली का है जो मैं आपको कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड गॉडली सर्विस, उसका हमने प्रयोग उसके ऊपर किया। परमात्मा को पिता के रूप में कह सकते हैं, आप जानते हैं महाभारत गीता पांडव गीता का श्लोक है, तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव। जिस प्रकार से उसमें माता परमात्मा, माता भी हो सकती है परमात्मा, पिता भी हो सकता है बंधु, परमात्मा बंधु भी हो सकता है और परमात्मा सखा भी हो सकता है। तो मैंने उन बहन को बाबा का सारा ही ज्ञान जो है ना सखा के रूप में सुनाया कि परमात्मा को आप सखा बना दो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपेनियन, साथी, सखा, साखी बना दो, सखा बना दो, साथ, और सुबह से उठो तब से परमात्मा के साथ में उठो, साथ में बैठो, साथ में चलो, सब कुछ साथ में चलो, स्नान कर जाओ तो भी साथ में चलो, नाश्ता बनाते हो भी साथ में चलो, चलो ये दोस्त, चलो हम ये करते हैं, ये दोस्त हम ये करते हैं, ये दोस्त हम ये करते हैं, हम ये आज खर्रा बन गए, आप क्या चाहते। इस प्रकार से हर बात में परमात्मा का दृष्टिकोण से, और परमात्मा नई दृष्टि आ रही बना रखे है, हमको लेके जाने के लिए आया हुआ है। इस प्रकार से सारा ही ज्ञान बाबा का ही ज्ञान, पिता के रूप में नहीं, अभी हमारे पास हम पिता के रूप में ज्ञान सुनते हैं कि परमात्मा जो है हमारा पिता भी है, परलौकिक पिता है, शिक्षक भी है, सद्गुरु भी है, परलौकिक पिता के रूप में सुनते हैं, परलौकिक सखा के रूप में भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, परमात्मा को बंधु के रूप में भी समझ सकते हैं, परलौकिक बंधु, परलौकिक शिक्षक के रूप में समझ सकते हैं। इस प्रकार से बाबा के साथ के सभी संबंधों का, अनुभव का, एक्सपीरियंस कराने का हमारे में ताकत होनी चाहिए, समझाने की ताकत होनी, ये बताने की ताकत होनी चाहिए। तो हमने 7 दिन तक उनको सारा ही ज्ञान, हाँ द्वापर युग से कैसे आ गया ये वो, हर सारा ही ज्ञान, ज्ञान सारा वही था परंतु दृष्टिकोण में परिवर्तन कर दिया और परमात्मा को सखा के रूप में, साथी के रूप में, हर समय साथी रूप में। हमने उनको कहा तुम 7 दिन रोज यही मंत्र जपती रहो, परमात्मा मेरा साथी है, साथी है, साथी है, नींद में तब भी साथी रहेगा। और मैंने कहा परमात्मा को साथी बनाने से तेरे पति को भी ईर्षा द्वेष नहीं होगा, और कोई स्थूल देहधारी को साथी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, घर में झगड़ा हो जाएगा। फिर तो परमात्मा को साथी बनाया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब आपका पति भी संतुष्ट रहेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 7 दिन का कोर्स करने के बाद हाँ दादी जानकी से हमने परिचय कराया, उसके बाद उसको दादी जानकी ने हमको दिया अनुभव करने के लिखने के लिए कहा। वो बहन ने लिख दिया, मैं यहाँ आई थी, आने से पहले मैंने नक्की किया था मैं आत्महत्या कर दूंगी, तो यहाँ पर मुझे परमात्मा सखा के रूप में मिल गया और सखा के रूप में मैंने 7 दिन उनके साथ व्यतीत किए हैं और हमने अभी नक्की किया है मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। तब से मैंने समझा कि बाबा का ज्ञान का अनुभूति कराने से क्या हो जाएगा। वो बहन ने अनुभूति किया परमात्मा का, हम सब पिता के रूप में करते हैं, तो सखा के रूप में, बंधु के रूप में, विद्या के रूप में, द्रविण सब प्रकार के अनुभूति के रूप में काम करिए, ट्राई करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, हर प्रकार के अनुभव करिए। कई लोग मुझे कहते हैं कि रमेश भाई आपका आर्टिकल हम सब सुनते हैं पढ़ते हैं बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा पर उसके पीछे मेरा एक प्रयोग है, मेरा प्रयोग है कि जिस दिन मुझे ज्ञानामृत के लिए लेख लिखना होता है मैं उस दिन परमात्मा के साथ का एक अनुभव करता हूँ। परमात्मा को कहता हूँ कि आप ज्ञान का सागर हो भाई, बाबा आप जानते हैं बाबा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, स्नेह का सागर है, शक्ति का सागर है, अनेक चीजों के सागर है। उसके अंदर से उस दिन ज्ञान का सागर के रूप में परमात्मा को याद करता हूँ और कहता हूँ कि बाबा जैसे भर्तरी ने राजा ने अपने जो उन्होंने जो है आकाश में से गंगा को पृथ्वी पर लाया, इस प्रकार से मैं बाबा आपका ये जो ज्ञान सागर का ज्ञान का जो है उसको मैं मेरी कलम के अंदर ला करके आपके ज्ञान का परिचय सबको कराऊं। ज्ञान सागर के ज्ञान का परिचय, ज्ञान सागर का जब ज्ञान का परिचय होता है, शक्ति होती है, बल होता है, हाँ तो क्या हो जाएगा। ऐसे ही हम लिखे और परमात्मा को ज्ञान का सागर के रूप में उसको खींचे और उसकी अनुभूति करे और उस अनुभूति को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करे, तो आपका लेख में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, आपके प्रवचनों में भी जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, हर बात में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। अगर आपका खुद का अनुभव है और अनुभव के आधार पर आप औरों को अनुभव कराने के लिए निकलेंगे तो, और इसलिए क्या हो जाएगा, मैं कल के बाबा की मुरली के आधार पर कहता हूँ, बाबा ने कहा दुनिया में दुख अशांति आदि बहुत एक बताया हुआ है, वो दुख अशांति आदि को दूर करने के लिए खुद को निर्विघ्न बनाने का और दुनिया को निर्विघ्न बनाने के कारोबार में अब संदेश देने के बदले में अनुभव कराओ। अनुभव कराएंगे तो क्या हो जाएगा, दुनिया के लोगों का दुख अशांति आदि सब दूर हो जाएगा। तो उसी दृष्टिकोण से कल की मुरली आप फिर से मेहरबानी करके आप पढ़िए, आपका दृष्टि बिंदु बदल कर दीजिए। अब तक संदेश देने का जो था रमणीकता के बातें छोड़ो, अब अनुभव कराने की बातों के आधार पर नए वर्ष में नई शुरुआत करने की है। जो करेगा हम बाबा उसको मदद करेगा, ये हकीकत है। और उसी दृष्टिकोण से आप देखिए कल की मुरली का जो टाइटल जो है उसके अंदर भी कहा हुआ है कि इस नए वर्ष में हर एक संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की शक्ति द्वारा समस्या प्रूफ और समाधान स्वरूप बनो। क्या हो जाएगा, हम ये एक्सपीरियंस ओरिएंटेड गॉडली सर्विस करेंगे तो क्या हो जाएगा, संतुष्टता की शक्ति के द्वारा हम समस्या प्रूफ और समाधान स्वरूप बन जाएंगे। दुनिया को क्या चाहिए, समाधान चाहिए, हर बात का समाधान चाहिए। और बाबा ने भी क्या कहा, देखो मुरली का पहला महावाक्य है, आज बाप दादा अपने चारों ओर संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संतुष्ट मणियां, हाँ बाबा ने हम बच्चों को क्या क्वालिफिकेशन दिया, संतुष्ट मणि, हम खुद भी संतुष्ट रहे औरों को भी संतुष्ट करें। अरे की लाइट बहुत अच्छी चमक रही है क्योंकि संतुष्टता की शक्ति बहुत श्रेष्ठ है। ये संतुष्टता की शक्ति कहाँ से आएगी, अनुभव करने से आएंगी, समझने से नहीं आएंगी, अनुभव करने से आएंगी। खाना हाँ, खाने से ही उसकी शक्ति का अनुभव होगा। खाना सामने पड़ा होगा, देखते रहेंगे तो क्या होगा, शक्ति आपको मिलेंगी। पैसा पैसा होते हुए भी कहीं भूखे रहते कारण पैसे को इस्तेमाल नहीं करते। इस प्रकार से बाबा के ज्ञान को भी कहीं इस्तेमाल नहीं करते, इसके कारण क्या होता है हा? बाबा के ज्ञान के आधार पर जो हमारे जो भी समस्या है जो उसका निवारण नहीं होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा संतुष्टता की शक्ति बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा कर करके संतुष्टता की शक्ति, और बाबा ने कहा जहाँ संतुष्टता है वहाँ और शक्तियां भी आ जाती हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ और शक्तियां आ जाती हैं। शक्तियां में दो बातें, एक शक्ति का ज्ञान देना और दूसरा शक्तियों का अनुभव कराना। आप अपने आप से पूछिए शक्तियों का ज्ञान आपको हो वो ठीक है, या शक्तियों का अनुभव हो जाए वो ठीक है, कौन सा आप पसंद करेंगे? आप बताइए। वैसे भी बहने भाई आप सबको मेरा प्रश्न है, शक्ति का ज्ञान होना अच्छा ठीक है या शक्ति का अनुभव करना ठीक है? अनुभव करना ठीक है ना। तो इसलिए शक्ति ऐसी चीज है, गुण ऐसी, अभी तक गुणों का शक्तियों आदि का हमने ज्ञान दिया, अनुभव नहीं कराया। अब से हमारा लक्ष्य में परिवर्तन करें, आज से हम अपना लक्ष्य में परिवर्तन करें, गुणों का, शक्ति का, संबंधों का, परमात्मा के कर्तव्यों का, इन सब बातों का हम अभी अनुभव करा रहे। माँ का प्यार हम कहते रहेंगे तो माँ का प्यार अनुभव करेंगे तब बच्चे को मालूम पड़ेगा माँ का सच्चा प्यार क्या होता है। इस प्रकार से इस दुनिया के अंदर परमात्म प्रेम क्या है, परमात्म शक्ति क्या है, परमात्मा के द्वारा आनंद की अनुभूति क्या हो सकती है, स्नेह की अनुभूति क्या हो सकती है, आदि आदि जो भी है इसका अनुभव कराओ। अनुभव कराने से क्या हो जाएगा, हाँ सबको महानता मालूम पड़ेगी, क्योंकि स्थूल व्यक्तियों का अनुभव, व्यक्तियों का प्रेम, व्यक्तियों का शक्ति आदि का तो अनुभव सब करते आए। 63 जन्मों में हमने किया क्या, 63 क्या 84 जन्मों में भी कहे तो हमने क्या किया। परमात्मा की शक्ति का अनुभव, परमात्मा का संबंध का अनुभव, परमात्मा के गुणों का, इन सब बातों का संगम युग में ही हो सकता है, सारे कल्प में भी नहीं हो सकता है। तो इनका अनुभव खुद भी करे औरों को कराए। अब तक हमने क्या किया, इनका ज्ञान सबको दिया, संबंध दिया, अपने मैसेज दिया, अनुभव नहीं कराया। कहीं कराते थे, होता था, कहीं बात करते थे, पर तो अभी प्राइमरी डायरेक्शन हमारी सेवा का क्या होना चाहिए, अनुभव करना और कराना। तो इसलिए बाबा ने कहा जहां संतुष्टता है वहां कोई भी अप्राप्त शक्ति नहीं है। संतुष्टता की शक्ति कैसा भी वायुमंडल हो, कैसा भी सर्कमस्टेंसेस हो, उनको सहज परिवर्तन कर सकती है। कैसा भी वायुमंडल हो, कैसा भी सर्कमस्टेंसेस हो, इन सबको संतुष्टता की शक्ति का अनुभूति कराने से परिवर्तन हो सकता है। और कहां तक बाबा ने इतने से भी आगे बताया कि संतुष्टता माया और प्रकृति की हलचल को भी परिवर्तन कर देती है। माया और प्रकृति की हलचल को भी परिवर्तन कर देती है। और इसलिए बाबा ने हम सबको अपने आप को अंदर झांकने के लिए कहा कि हर एक अपने को देखे कि हम संतुष्ट मणि बने हैं, हम संतुष्ट मणि बने हैं। और दूसरा टेस्ट हमने बच्चों को दिया कि कोई भी मनुष्य आत्मा की परिस्थिति को परिवर्तन कर, वायुमंडल परिवर्तन करने की शक्ति हमारे में है। अब ये शक्ति, ये अनुभव, ये कार्य हमको करना है कि हम हर कोई सी भी मनुष्य की कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी वायुमंडल हो, उसको हमें परिवर्तन करना है। और ये परिवर्तन अनुभव कराने से ही होगा, ज्ञान देने से कहाँ तक हो जाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती। ज्ञान से नहीं होगा ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, हम संदेश देने से नहीं होता ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, उसमें मेहनत ज्यादा है। और इसके अंदर अनुभव कराने में मेहनत कम और रिजल्ट अनेक गुना ज्यादा होता है। आगे भी बाबा ने कहा है, साथियों में संतुष्टता की शक्ति वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है। और इसलिए बाबा ने देखो सवाल पूछा हुआ है, ये मैंने कहा ना अनुभव कराने की, एक्सपीरियंस ओरिएंट, अनुभवात्मक, पहले संदेशात्मक सेवा थी, अभी अनुभवात्मक सेवा है। बाबा ने स्पेसिफिकली वो अनुभव शब्द यूज किया हुआ है कि तो अपने को ऐसे संतुष्ट मणि अनुभव करते हो, अनुभव समझा, अनुभव एक्सपीरियंस करना, पहले हम एक्सपीरियंस करेंगे तो औरों को अनुभव करा सकेंगे। तो मैं जो आपको कह रहा हूं ना, मैं कल के बाबा के मुरली में अनुभवात्मक एक्सपीरियंस ओरिएंटेड गॉडली सर्विस है, इसका बेस ये है कि ऐसे संतुष्ट मणि अनुभव करते हो। संतुष्ट मणि का ज्ञान हो गया वो अलग बात है, पर उसका अनुभव करते हो, ज्ञान एक चीज है, अनुभव दूसरी चीज है। मुझे भी ऐसा मालूम है मैं करोड़पति हूं, ऐसा मानता रहूं, वो मानता रहो, मान्यता रहेगी, पैसा करोड़पति नहीं, खिस्सा खाली भपका भारी होगा तो क्या फायदा। मैं इस प्रकार से अनुभव करता हूं, इसलिए बाबा ने सबको सवाल भी पूछा हाँ कि संतुष्टता की शक्ति है और समय पर कार्य में लगाते सफलता का अनुभव होता है, वह हाथ उठाओ। हाँ, समय पर कार्य में लगाने से सफलता का अनुभव, देखो फिर से अनुभव बाबा ने शब्द किया, सफलता का अनुभव भी होता है, सफलता का संदेश मिलने की बात नहीं कही है। बाबा का हर एक शब्द की कीमत है, एम्फसिस है। हाँ, सफलता का अनुभव भी होता है, अनुभव एक्सपीरियंस, बराबर है तो मैं कह रहा हूं अभी आपको मालूम, एक्सेप्ट करते हो कि अनुभव 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 बाबा कराना चाहते हैं, और अनुभव कराने की सेवा का लक्ष्य कल बाबा ने दिया, इसलिए बाबा ने कहा हाँ कि अनुभव भी होता है, लंबा हाथ उठाओ बाबा ने कहा। और इसलिए बाबा ने फिर दूसरा एक टेस्ट बताया हाँ कि कोई भी साथियों में हलचल होती है उस समय पर यह शक्ति उस परिवर्तन को, हलचल को परिवर्तन करती है, उसकी रिजल्ट पहले अपने अपने स्थानों को शक्तिशाली बनाने में सक्सेस है। अब ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेशन है, अनुभव कराया कर दिया, उसके बाद क्या करने का है, अपने अपने सेवा स्थानों पर उसका अनुभव कराने का। अब तक अनुभव कराने में सहन शक्ति की भी बात थी, बाबा ने कहा है कई स्थानों में अभी भी सहन शक्ति से स्थानों को सदा निर्विघ्न बनाने में आवश्यकता की आवश्यकता है। और बाबा ने कल उलेना भी दिया, तो बाबा ने कहा था, होमवर्क दिया था हाँ, हर एक अपना सेवा केंद्र को निर्विघ्न बनाने का, और बनाने का रिपोर्ट बाबा को दे, अभी तक बाबा ने नहीं दिया। कल बाबा ने विस्तार कर दिया, अपने सेवा केंद्र को निर्विघ्न नहीं परंतु अपने जोन को भी निर्विघ्न बनाने, बहुत हमारी जिम्मेदारी बढ़ा दिया, फक्त सेवा केंद्र नहीं, मैं एक व्यक्ति मैं हूं, फिर मेरा सेवा केंद्र है और फिर मेरा जोन है, तो अभी जोन तक की बात होती है, उसको निर्विघ्न करने की बात है। फिर बाबा ने सेवा केंद्रों को भी निर्विघ्न बनाने की क्या जरूरत है उसके बारे में, समय के बारे में, क्या समय की आवश्यकता, जो वर्तमान समय जो है, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, उस समय की बात करते हैं, समय की आवश्यकता अनुसार हर स्थान निर्विघ्न होना आवश्यक है। और किसको निर्विघ्न बनाना है, किसको निर्विघ्न बनाना है, जिस प्रवृत्ति में हम रहते हैं उसको भी निर्विघ्न बनाना है। इसके लिए बाबा ने कहा है, चाहे सेवा स्थान हो हाँ, जिस सेवा केंद्रों पर हम जाते हैं, बस सेवा केंद्र के अंदर स्टूडेंट है, चाहे अपनी प्रवृत्ति में भी है, हम सबकी अपनी प्रवृत्ति है, हम सबका अपना परिवार है, किसी के घर में माँ बाप है, पति पत्नी जो भी है, बच्चे हो जो भी है, नौकरी करने वाले को नौकरी है, धंधा है, बिजनेस है, जो भी है, अपना प्रवृत्ति में भी, माना हर प्रकार की जो भी हमारी प्रवृत्ति है और हर स्थान, हाँ, इन तीनों को निर्विघ्न संतुष्टता की शक्ति से संपन्न करना है। इसका शक्ति का प्रयोग कर करके हमको हमारा सेवा स्थान को, हमारे प्रवृत्ति को और हमारे हर स्थान को निर्विघ्न बनाना है। और इसलिए बाबा ने फिर याद कराया, बच्चे समय की रफ्तार को देख रहे हो, सब देख रहे हैं, फिर बाबा ने और आगे ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया। ब्रह्मा बाबा चक्कर लगाते हैं, हाँ, और बाबा ने अपना ब्रह्मा बाबा का जीवन का अनुभव बताया, हाँ, कि ब्रह्मा बाबा ने भी संतुष्टता की शक्ति से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त किया हुआ है। ब्रह्मा बाबा का जीवन चरित्र तो आप हम सब जानते हैं, इसलिए मैं उसके अंदर उसकी गहराई में नहीं जाता हूँ। अगर उस गहराई में गया तो मैं समझता हूँ 2 घंटा मुझे चाहिए, कि बाबा ने संतुष्टता की शक्ति के द्वारा यह विश्वविद्यालय का फाउंडेशन कैसे पक्का किया, इतना सुंदर हरि को संतुष्ट किया। मैंने एक बार क्या किया, ब्रह्मा बाबा के सामने बात पूछी, क्योंकि हमारे बॉम्बे का एक युगल आया हुआ था, तो हम लोगों ने समझा था कि हमको जरा उसको इच्छा था कि हम उसको बाबा के सामने रखेंगे, बैठाएंगे, और फिर मैंने वो बाबा के सामने उसको आग बैठाया। फिर मैंने बाबा को पूछा कि बाबा ये युगल जो यहाँ बैठा वो उसमें आगे कौन है पीछे कौन है, आगे कौन है पीछे कौन है। बाबा ने बहुत सुंदर संतुष्टता की शक्ति का प्रयोग किया, बहुत सुंदर, हमने सोचा नहीं था ऐसा साकार बाबा ने जवाब दिया। बाबा ने कहा दोनों एक दूसरे से आगे हैं, आप समझे मेरी बात, बाबा की बात को, दोनों एक दूसरे से आगे हैं, दोनों संतुष्ट रहे, दोनों एक दूसरे से आगे हैं। माना हम लोग क्या बोल देगा, अरे ये आगे है ये पीछे है, ऐसा है ऐसा है ऐसा कर बोल देते हैं। बाबा ने क्या किया, दोनों को संतुष्ट किया, कैसे किया, दोनों एक दूसरे से आगे हैं। ये हमको सीखने का है कि कैसे सामने वालों को संतुष्ट करे। ओम शांति। इसलिए बाबा ने क्या कहा, संतुष्ट मणि बनना और बनने के बाद अनुभव कराने के बारे में क्या करना चाहिए, फॉलो फादर। हम ब्रह्मा बाप ने संतुष्टता की शक्ति से हर परिस्थिति पर विजय पाया, इसलिए हर एक संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की शक्ति का विशेष कार्य में लगाते जाओ। ये ऑपरेटिव या डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है ऑपरेटिव, अभी खुद संतुष्ट मणि बने और संतुष्टता की शक्ति के को विशेष कार्य में लगाते जाओ, विशेष संदेश देते जाओ, ऐसा नहीं। अब तक हम विशेष संदेश देते रहे, संदेश देते रहे, संदेश देते रहे, परमात्मा आया है, ये है वो है, इस प्रकार से। अब बाबा ने क्या बता दिया, इसको विशेष कार्य में लगाओ, अनुभव कराओ। अनुभव कराने से क्या होगा, और इसलिए बाबा ने क्या कहा, नया वर्ष में बाबा ने क्या कहा, देखिए अब नया वर्ष आ रहा है, अब अभी तो आ गया, आ रहा है, हरेक को चेक करना है कि संतुष्टता की शक्ति से स्वयं भी संतुष्ट, साथी भी संतुष्ट रहे, और जो बाप दादा चाहते हैं वैसे ही संतुष्ट हम रहे। ये अपने लिए पहला चेकिंग करना है कि जो बाप दादा चाहते हैं ऐसे इतने तक का ऐसा हम संतुष्ट रहे। और दूसरा टेस्ट कि कोई भी समस्या संतुष्टता से समाप्त हुई। कितना सुंदर साहित्य है, आप साहित्य बाबा का देखिए, कितना कोई भी समस्या का स, संतुष्टता का स, असमाप्त का स, अर्थात कोई भी समस्या संतुष्टता से समाप्त हुई, स स स, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिटरेशन। भाषा का ये वैभव है, साहित्य का ये वैभव है, एलिटरेशन, मेटाफर्स आदि आदि जो भी है, इस प्रकार से जैसे कालिदास जो है संस्कृत साहित्य के अंदर बहुत महान हो गए, उनके पास भी भाषा का बहुत बड़ा वैभव था। हमारे श्री बाबा के पास भी भाषा का बहुत बड़ा वैभव है। हाँ, बाबा ने कहा समस्या संतुष्टा और समाधान तीनों में स्व कर करके एलिट्रेशन कर करके हमको गाइडेंस दिया हुआ है, क्योंकि दुनिया के अंदर दिन प्रतिदिन असंतुष्टता बढ़ती ही जाएंगी। और अपने आप को देखो कि मैं सारा दिन संतुष्ट मणि रही या रहा, और इसलिए इसके लिए सहज साधन है फॉलो ब्रह्मा बाप को। फिर बाबा ने ये संतुष्टता की शक्ति का अनुभव कैसे करा सकेंगे, क्या कर सकते हैं? बाबा ने कहा कि मैं उसके लिए बाप बच्चों को वरदान देता हूं। बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया हुआ है, परंतु प्राप्त किसको होगा? प्राप्त किसको होगा? बाबा ने कहा है बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष के लिए विशेष अमृत वेले का पहले सहज वरदान के रूप में वरदान देने का प्लान बनाया हुआ है। वरदान देने का सहज वरदान के रूप में वरदान देने का प्लान बनाया है। सब पूछते हैं कि नए वर्ष में क्या होगा, और इसलिए बाबा ने कहा नया वर्ष में क्या प्राप्त होगा? तो बाबा कहते हैं बाप दादा का विशेष, बाप दादा का विशेष एक्स्ट्रा दृढ़ संकल्प वालों को पुरुषार्थ में सहयोग प्राप्त होगा। ऐसी अनुभव कराने की सेवा का दृढ़ संकल्प जो भी करेंगे, जो भी और भी प्रकार का जो भी दृढ़ संकल्प करेंगे उसको पुरुषार्थ में विशेष सहयोग प्राप्त होगा, और यह नए वर्ष का गिफ्ट सहज हो जाएंगे। बाबा ने इसलिए सबको पूछा कि ये अमृत वेले का वरदान सबको पसंद है, सहजता से प्राप्त हो सकता है, परंतु प्राप्त किसको होगा? जो अमृत वेले योग करेगा वो। और इससे क्या होगा? बाप दादा की तरफ से विशेष सहयोग स्नेह शक्ति प्राप्त होगी, सहयोग और स्नेह की शक्ति प्राप्त होगी। बाबा ने देखा, फिर बाबा ने कहा बाप दादा ने देखा है सबको लगन अच्छी है, कुछ करना है सबके जीवन में है, सब हम यहाँ बैठे हैं वो सब हम चाहते हैं कुछ ना कुछ करके दिखा है, सब में है ना लगन। बाबा ने भी कहा हर एक के दिल में ये लगन है, लेकिन जो बीच में कोई ना कोई सर्कमस्टेंस आ जाता है उसके लिए इस वर्ष में संतुष्टता की शक्ति विशेष कार्य में लगाना है। कार्य में समझना नहीं है, कार्य में लगाना है। मैं हर चीज में बाबा ने कल से कल का क्या कहा, अनुभव करो, खुद के लिए करो औरों के लिए करो, लगाना है कि लगाना है, लगाना है, और लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर चेक करो कि आगे सतह ही बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से संतुष्टता की शक्ति के बारे में बाबा ने कल डायरेक्शन दिया। अभी आपके ऊपर है, हम सबके ऊपर है कि इसको कहाँ तक अनुभव करें और अनुभव औरों को करावे। फिर बाबा ने कहा हम चारों और मधुबन में लगन से याद करते रहते हैं, तो आप क्या बनेंगे? बाबा ने सबको पूछा आप क्या बनेंगे, बाबा ने खुद ने जवाब दे दिया हम सब संतुष्ट मणि बनना चाहते हैं। सबकी यही इच्छा है ना संतुष्ट मणि बनने का, या और कोई इच्छा है? संतुष्ट मणि बन जाए। और इसलिए बाबा ने कहा जो संतुष्ट मणि बनना चाहते हैं वो हाथ हिलाओ, तो सबने हाथ हिलाया, और फिर क्या हो जाएगा? अगर सब हम संतुष्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो चारों ओर क्या हो जाएगा? वाह 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 का गीत बजेगा। इसलिए बाबा ने कहा आप सब कौन हो? संतुष्ट मणि हो। तो फिर बाबा ने कहा पूरा ही हो या थोड़ा थोड़ा हो? फिर बाबा ने हिम्मत का हौसला दिया, जानकी दादी ने भी कल जवाब दिया हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। इस प्रकार से बाबा ने हौसला दिया कि कहो हमने संतुष्ट नहीं बनेंगे तो और कौन बनाएगा, और बाप दादा जब चक्कर लगाएंगे अभी आगे तो क्या हो जाएगा। हर स्थान पर संतुष्ट मणि की लाइट चमकती हुई दिखाई देंगी, और इससे क्या हो जाएगा, संतुष्ट मणि बन जाएंगे, लाइट चमकती रहेंगी, तो इनसे क्या हो जाएगा। बाबा ने पूरा ही ए टू जेड सब बातें बताई हुई है। रिजल्ट क्या होगा, ये अनुभव कराने की शक्ति के आधार पर, संतुष्टता की शक्ति की अनुभूति कराने के सेवा के आधार पर क्या होगा, हम सब समस्या प्रूफ, हमारे पास कोई समस्या नहीं होगी, और समाधान स्वरूप औरों को हम समाधान दे सके, ऐसे हमारी विशेष रिजल्ट बाप दादा को देखने को मिलेंगी। ये सब बनना पसंद करते हैं ना, हम सब समस्या प्रूफ बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और समाधान स्वरूप भी बनना चाहते हैं, और औरों को समाधान स्वरूप समाधान देने का शक्ति हमारे में हो वो भी हम चाहते हैं। ये चाहना हमारी ये अनुभव करने कराने की शक्ति के द्वारा हो सकती है। कितनी सुंदर बाबा ने बात कही है, और कितना सुंदर ये अनुभव कराने की एक्सपीरियंस ओरिएंटेड गॉडली सर्विस का रिजल्ट होगा कि हम भी समस्या प्रूफ बनेंगे और औरों को भी समाधान देने वाले समाधान स्वरूप बनेंगे। इनसे ज्यादा और क्या चाहिए। ये रिजल्ट हम मैसेज ओरिएंटेड संदेश देने की सेवा से इतना नहीं होता था, इतना अभी समाधान स्वरूप और समस्या प्रूफ हम ईश्वरीय सेवा के अंदर अनुभव कराने की सेवा से करेंगे। और इसीलिए बाबा ने फिर से कहा, बहुत सुंदर बात कही हुई है, आप सबने भी नोट किया हुआ होगा कि आज बाप दादा विशेष संतुष्टता की शक्ति का वरदान चारों ओर के बच्चों को दे रहे हैं। क्या वरदान मिला, चारों ओर के बच्चों को विशेष कौन सा वरदान, संतुष्टता का वरदान बाबा दे रहे हैं। वरदान हमारे हाथों में है, हम वरदान क्या कैसे उपयोग करें उसके ऊपर है। वरदान बाबा दे रहे हैं और इसके आधार पर क्या उसका अनुभव करना पड़ेगा, उसका उपयोग करना पड़ेगा। संतुष्टता का वरदान बच्चों को दे रहे, कितना सुंदर बाबा ने कितना ओपनली कल वरदान दे दिया, ओपनली। जैसे भक्ति मार्ग में सुनते थे परमात्मा वरदान देते हैं, परमात्मा वरदान देते हैं, वो हिरण्यकश्यप ने वरदान दिया कि न मैं ऊपर मरूं, न मैं नीचे मरूं, न मैं घर में मरूं, न मैं बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं, न मैं पशु से मरूं, ऐसे ऐसे वरदान लिए बाबा ने। कल कौन सा में वरदान दिया है, संतुष्टता का शक्ति, संचय शक्ति का वरदान कल बाबा ने दिया। अब ये शक्ति का, संतुष्टता की शक्ति का वरदान का उपयोग करना हमारे हाथों में है। हमारे पास पैसा हो परंतु उपयोग न करें, हमारे पास अन्न हो परंतु हमारी भूख को संतोष देने का प्रयत्न न करें, तो उसमें गलती बाबा की नहीं है, गलती हमारी है कि हमने इसका सही प्रकार से उपयोग करना सिखा नहीं। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमारी टीचर्स बहने भाई जो भी है सेवा केंद्रों पर जाकर के जब जाए तो वहां पर संतुष्टता की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए, इस वरदान का उपयोग कैसे किया जाए और उसका प्रयोग कैसे किया जाए, ये सिखाने की जरूरत है। सबको ये सिखा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सब एक्सपर्ट बन जाएंगे। और इसलिए बाबा ने क्या ऑपरेटिव पार्ट, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, और संतुष्टता की शक्ति से विश्व में भी संतुष्टता का वाइब्रेशन फैलाना है, ये इस 2013 के ईश्वरीय सेवा का लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, और संतुष्टता की शक्ति विश्व में भी संतुष्टता के वाइब्रेशन फैलाना है। और दूसरा एक तरीका बाबा ने बताया, संतुष्टता की शक्ति के अंदर खुद के अंदर भी दूसरे को भी काम में मदद करें। एक तीसरी जो वरदान दिया सुबह का, सुबह योग करके करो वो शक्ति मिलेंगी। ऐसे दूसरा एक वरदान मिला, कहीं ना ध्यान सबने ध्यान से सुना ही होगा, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम आवे ना तो आप मधुबन में पहुंच जाओ। कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आवे मधुबन में पहुंच जाओ, मन से, तन से नहीं मन से। तो क्या हो जाएगा, बाबा बच्चों के मन में एक्स्ट्रा खुशी का खोराक भर देंगे और वो छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बाबा पूरी मदद कर सकते हैं। संतुष्टता की बात एक बात बताई, फिर सुबह वरदान की बात बताई बाबा ने, और तीसरी प्रैक्टिकल स्वरूप में अगर कोई भी प्रॉब्लम सामने आ जाए तो आपको मदद कर सकते हैं। बहुत सुंदर बातें हैं बाबा के पास। हमारे पास ट्रेन के अंदर दो भाइयों का एक्सीडेंट हो गया, एक भाई को जबरदस्त चोट लगी, दूसरे को उतना ही चोट लगी परंतु नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। हमने अव्यक्त बाबा से संदेश पूछा, उसने कहा बाबा एक को ज्यादा लगा एक को कम लगा का कारण क्या। भक्ति मार्ग में ऐसी बातें होती है, ज्ञान मार्ग में भी ऐसी बातें होती। बाबा ने कहा जिस बच्चे को कम लगा उसको लगते पहले जैसे लगा उसने वो बाबा करके बाबा को याद किया, वो बाबा, वो मन से बाबा के पास पहुंच गया वो बाबा। और इसके लिए जब बाप को याद किया तो बाप की फर्ज है बच्चे को मदद करने की। हम लोगों ने अभी तक ये अनुभव नहीं किया हुआ है कि हमारे पास कोई भी समस्या आए हम समस्या को बाबा के सामने रख दें। बाबा के सामने समस्या रखने का अनुभव करने का ये प्रयत्न करना चाहिए, बहुत सुंदर प्रयत्न है। कोई भी समस्या आए, छोटा बच्चा क्या होता है उसको जो भी समस्या है माँ के पास बाप के पास पहुंच जाता है और क्या करता है, कुछ नहीं करता है। इस प्रकार से हमारे पास समस्या आए आप बाबा के पास पहुंच जाओ, एक दो मिनट बाबा के पास याद में बैठ जाओ। हम लोग जब पहली बार विदेश में सेवा में गए थे बाबा ने कहा था जो भी जब भी सेवा के लिए निकलो पहले तीन मिनट बाबा की याद में बैठ करके बाबा की गोद में बैठ करके बाबा से शक्ति लेकर के फिर सेवा करो। हम ये नहीं करते हैं। आप सबको हमारा ये प्रयोग है आपके सामने, आपको मैं आपको ओपनली सिखाता हूँ और ये करके देखो। हमने करके देखा हुआ है कि बाबा का कोई भी हम सेवा का कार्य करते हैं, कोई भी कार्य कर शुरुआत करें उसके पहले दो मिनट तीन मिनट बाबा की याद में बैठ करके शक्ति भर करके फिर जाओ। मैदान में जाओ, युद्ध के मैदान में जाओ, प्रवृत्ति के मैदान में जाओ, जहां भी जाना हो बाप की शक्ति ले लो, साथ में शक्ति के साथ साथ बाबा की मदद का कवच भी पहन लो। युद्ध में जाते हैं ना योद्धा, युद्ध में जाते हैं तो क्या पहनता है मालूम है ना, कवच पहनता है मालूम है। आप जाओ जयपुर पैलेस में, हम गए थे देखने के लिए जयपुर में, तो राणा प्रताप का कवच दिखाया था कि राणा प्रताप युद्ध में जाता था उसके पहले कौन सा कवच पहनता था। तो इस प्रकार से योग की ढाल और कवच जो है योग की शक्ति का, इस प्रकार से कवच पहन लीजिए और फिर जाइए। कोई भी प्रकार की कैसी भी समस्या होगी आपके ऊपर वार नहीं कसेंगे, और अगर वार करेंगे भी सही तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा जितना आप बाबा की याद के बिना सामना करने के लिए निकलेंगे और बाबा की याद के सहित आप निकलेंगे। तो ये सारे बाबा प्रयोग सिखा रहे हैं, पर करना चाहिए, कोई भी प्रकार का प्रयोग करना चाहिए। मैं आपको एक अपना अनुभव बताऊं, मैं पहली बार यहाँ आबू में आ रहा था, शाम को 5 बजे नक्की किया कि मुझे आबू जाना है, हमारे परिवार वाले सब आ गए थे आबू में, मैं मेरे को काम था थोड़ा इसलिए मैं नहीं आया, 61 की बात है, 5 बजे निकलना था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा बाबा मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैंने 5 मिनट घर से निकलने से पहले बाबा को याद किया, बाबा मेरे पास तो कोई ट्रेन की टिकट का रिजर्वेशन भी नहीं है, टिकट भी नहीं लिया हुआ था, कुछ भी नहीं है, और मैं जाता हूँ, सौराष्ट्र मेल था उसमें जाने का था, 8:15 बजे निकल रहा था, 5 बजे मैं घर से निकलने के लिए तैयारी कर रहा था। मैंने बाबा को याद किया कि बाबा मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरे को सब प्रकार की फैसिलिटी दे देना। मैं स्टेशन पर पहुंचा, बाबा को याद किया हुआ था, बाबा का याद का कवच पहना हुआ था और बाबा का याद का बल भरा हुआ था। स्टेशन पर गया, टिकट लिया, टिकट लेने के बाद मैंने उनसे पूछा कि इसमें रिजर्वेशन कोई है, तो उसने कहा कि एक सीटिंग सीट है, एक सीटिंग का रिजर्वेशन है। मैंने कहा दे दो, तो उस जमाने में सीटिंग का रिजर्वेशन 4 आने में होता था, 4 आने में सीटिंग का रिजर्वेशन हो गया। मैं जाकर के ट्रेन आई, बैठ गया, विंडो बड़ी सीट थी, वो खिड़की के बाजू में थी, गाड़ी चलने लगी, हमारे पास थोड़ा मैं खाना लेकर के आया था घर से, वो खाना खा करके मैं बैठा था। इतने में एक भाई जो था उसका ऊपर की सीट थी, वो ऊपर से नीचे उतरा, कहने लगा कि मुझे दमा है, मुझको घड़ी घड़ी थूकना पड़ता है, मैं ऊपर से कैसे घड़ी घड़ी उतरूं नीचे, इसके बदले में आपकी एक सीट जो है वो मुझे दे दो और आप मेरी सीट के ऊपर जाकर के मेरा बिस्तर भी है उस पर सो जाओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्या बड़ी बात है, वो नीचे बैठा, मैं ऊपर जाकर के सो गया। अहमदाबाद तक आराम से पहुंच गया 6 बजे तक, अहमदाबाद से फिर गाड़ी चेंज करनी थी, फिर हमने सोचा कि आगे कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो खाना पीना कुछ नहीं था। इतने में हमारे एक मित्र थे वो भी आ रहे थे, उन्होंने सामने देखा दिल्ली मेल के अंदर वो बैठे हुए थे, मेरे को बुलाया रमेश भाई इधर आओ। मैं गया, कहने लगा कि आप आओ हमारे पास जगह है, उधर उनके पास बैठ गया, उनके साथ खाना पीना खा करके आबू में पहुंचा। जैसे आबू में पहुंचा तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा कैसे जाऊंगा कहां जाऊंगा, मालूम था कि बस स्टैंड सामने है, मैं लाइन में जाके खड़ा रहा। इतने में प्रेम बहन जो है देहरादून के, वो आई कि रमेश भाई आपके लिए टिकट लेकर के रखी है, आप आ जाओ। और इस प्रकार से हम आराम से पहुंच गए। कारण क्या था, बाबा की शक्ति का कवच पहन करके चलो, बाबा की याद में चलो, बाबा के पूर्ण विश्वास के द्वारा चलो। खाली कंडीशन ये है, पूर्ण विश्वास ही है, फक्त विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास। कुमारी भट्ट की कहानी है शास्त्रों में, एक राजा ने कहा कि वेद अपौरुषेय है, उसके अंदर आप मानते हो? कहा मानता हूं। तो कहा ये 4 मंजिली मकान है, उसमें से ऊपर से आप गिरो, अगर वेद अपौरुषेय होगा तो आपको कुछ नहीं लगेगा। तो उसने कहा जरूर मैं लगाता हूं, जाता हूं। वो ऊपर गया और ऊपर जाकर के कहा कि अगर वेद अपौरुषेय है, हे परमात्मा अगर वेद अपौरुषेय है तो मैं नीचू गिरूंगा, तो मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो जंप लगाया तो उसका पांव तो टूट गया, तो उसने विचार किया कि ऐसा कैसे हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि तुमने विचार, तुम्हारी दिल में लगन 100% नहीं थी, तुमने कहा अगर वेद अपौरुषेय है तो, अगर है अगर मगर की बात होती है ना, हाँ तो आपका विश्वास दृढ़ संकल्प पर नहीं होता है। इसलिए हमारी बाबा कहते हैं ना कि बांधेलिया मुझे ज्यादा प्यारी है, क्योंकि बांधेलियों के दिल में बाबा के प्रति जितनी लगन होती है ना, इतनी बाबा ने कहा छुटेले के अंदर भी नहीं होती है। इस प्रकार से लगन के ऊपर 100% जहां होगा, 100% लगन वाले को 100% प्राप्ति हो सकती है। मैं दूसरा एक अनुभव आपको बताऊं, हमारी एक राधी माता करके थी, राधी माता वो बाल विधवा थी, 12 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी और 13वें वर्ष में उसका पति ने शरीर छोड़ दिया था। वाटल मेंशन सेंटर में आती थी, पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं, थोड़ा कुछ गुरुमुखी जानती थी, आती थी सेवा केंद्र के ऊपर, किचन में भंडारे में आदि में काम करती थी, मदद करती थी। उसने उसका व्हील अपने हमसे बनवाया और उसमें उसने कहा मेरा जो भी कुछ है 100% बाबा का। मरने उसके बाद थोड़े समय के बाद उसका ब्रेन हेमरेज हुआ और मर गई, उसके बाद उस जमाने में तो बाबा जो है ऐसे आत्माओं को भेजते थे वापस, तो वो नीचू में आई, बाबा नीचू में आई बोल रही थी बाबा, उसने बताया कि मुझे बहुत बड़ा भारी रिच रॉयल फैमिली में बाबा ने जन्म दिया हुआ है। तो मैंने उनके पूछा कि ऐसा रिच रॉयल परिवार में तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, तुमने तो इतनी सेवा नहीं किया था, ना तन से किया था, इतने मन से किया था, ना धन से किया था, ना तुमने प्रदर्शनी समझाई, नहीं कुछ नहीं किया था, तो कैसे हुआ। तो उसने बताया कि मैंने भी बाबा को यही पूछा, बाबा मैंने इतनी सेवा नहीं किया तो फिर आप ऐसे इतने श्रेष्ठ परिवार में जन्म क्यों देते हो। बाबा ने कहा बच्ची एक परीक्षा में तुम पास हो गई हो, हम सबको अंतिम परीक्षा में एक पास होना है, दो पेपर हमारे सामने आने वाला है, नष्टो महा कहाँ तक बने हैं और स्मृति लब्धवा कहाँ तक बने हुए हैं। तो कहा बच्ची तू नष्टो महा के पेपर में पास हो गई हो, तूने तेरी जीवन का जो भी पूंजी थी जितनी भी थी उसके पास 1200-1500 से ज्यादा रुपया बचत भी नहीं थी, वो भी मैं आपको बता दूं क्योंकि मुझे सारी बात मालूम है। और फिर भी उसने कहा सब 100% जो भी मेरी संपत्ति है वो 100% बाबा की है, मतलब संपूर्ण कोई भी स्कूल के अंदर कोई भी कॉलेज के अंदर 100 में से 100 मार्क मिले इनसे ज्यादा श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। तो उस प्रकार से उसने कहा कि बाबा ने कहा कि तू 100 में से 100 मार्क नष्टो मोहा के पेपर में 100 में से 100 मार्क लेके आई, मुझे तुझे इतना श्रेष्ठ पद देना ही पड़ेगा। हम सब भी उसी लगन के आधार पर 100% लगन से ये संतुष्टता की शक्ति का प्रयोग जीवन में करें, औरों को संतुष्ट करें, अपने भी जीवन में संतुष्टता का उदाहरण करें, तो बाबा हमको 100% श्रेष्ठ में श्रेष्ठ अच्छे में अच्छा जीवन नई दुनिया के अंदर दे सकते हैं। बाबा की ये गारंटी है, परंतु तो होना चाहिए हमारी 100% लगन, 1% भी कम नहीं। ये बहुत कठिन बात है, हम सब सोचते हैं ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा वैसा सोचा तो इसलिए ऐसा ही वैसा ही हो जाएगा, पद भी श्रेष्ठ पद नहीं होगा। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना और संतुष्टता की शक्ति से विश्व में संतुष्टता का वाइब्रेशन फैलाना है। और छोटी मोटी परीक्षाएं आए तो बाबा के पास मधुबन में पहुंच जाने का है, ये काम करने का है, बहुत सहज है। और इसलिए मधुबन में आने से क्या फायदा होगा वो भी कल बाबा ने बताया। कल ऐसे कई आत्माएं आई थी जो बिचारी खास विशेष पुरुषार्थ करके आई थी, इसलिए बाबा ने उनके लिए कहा मधुबन में आने से क्या हो जाएगा, हम बाबा की बातें बोलने में मिलती है, चलना भी बाबा के पावन स्थल में होता है, भोजन भी बाबा के ब्रह्मा भोजन मिलता है। इस प्रकार से मधुबन में आना अर्थात अपने में ज्ञान योग धारणा और सेवा में कदम को आगे बढ़ाना। हम सब यहाँ जितने बैठे हुए हैं ये इतना फायदा लेते हैं कि ज्ञान योग धारणा और सेवा में कदम को आगे बढ़ाना। और इसलिए बाबा सबको पूछ रहे हैं कि क्या मधुबन का यह सब फायदा आप सबने उठाया है। बाबा हमने नहीं उठाया है, आगे ध्यान रखेंगे। फिर बाबा ने मुझे फायदा उठाया है क्योंकि यहाँ तो कोई जिम्मेवारी है नहीं, अपने को आगे बढ़ाने की ही सिर्फ जिम्मेदारी है। हम आए हैं यहाँ मधुबन में आए हैं आगे बढ़ने के लिए। ऐसा कर करके बाबा ने कल मुरली समाप्त किया 9:02 अर्थात 1:04 बाबा ने मुरली चलाई। उसके बाद बाबा ने कहा अच्छा आगे क्या है, सेवा का टर्न दिल्ली का जा था उसके अंदर भी बाबा ने बताया। और बाबा ने क्या चाहा, निर्विघ्न हर जोन की रिजल्ट देनी है वो बताया हुआ है, और 1 लेने की बात कही है। फिर डबल फॉरेनर्स के बारे में भी कहा, डबल फॉरेनर्स माना डबल पुरुषार्थी, इस प्रकार से बाबा ने कहा है। फिर जूरिस्ट लोगों को भी कहा, हम जूरिस्ट वालों को भी कहा कि बाबा ने बताया कि जब जिम्मेदारी मिलती है तो सेवा अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती है, जिस प्रकार से जूरिस्ट की सेवा भी हर जगह पर होती है वो भी बात बताई। फिर बाबा ने अपनी एक चाहना बताई, शास्त्रों में भी है कि परमात्मा को इच्छा होती है। शंकर भाष्य है उसमें पहले आता है स इच्छत, परमात्मा की इच्छा हुई इसे परमात्मा से वो ईश्वर बना। ईश्वर माना जिसको इच्छा हुई वो ईश्वर, तो इसलिए परमात्मा को भी इच्छा होती है। क्या बाबा को इच्छा होती है? और हम सबकी ये फर्ज है, पवित्र फर्ज है बाबा की इच्छा को परिपूर्ण करने की, है क्या नहीं? आप सब क्या मानते हो? बाबा की इच्छा जो भी है उसको परिपूर्ण करने की हमारी जिम्मेदारी है। बाबा ने कहा बाप दादा हर एक के पुरुषार्थ में प्रोग्रेस चाहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं या नहीं वो देखना चाहिए। कल वर्ष पूरा हुआ ना, तो उसके आधार पर हमें देखना चाहिए कि पिछले एक वर्ष में हम कितना आगे बढ़े। दो प्रकार का पुरुषार्थ होता है, एक कोहलू का बेल के माफिक होता है, वो घूमता रहता है, उसका प्रोग्रेस नहीं होता है, बिजी बहुत रहता है। हम लोग भी ऐसे ही है, हम बिजी बहुत रहते हैं परंतु आगे बढ़ते हैं या नहीं वो देखते नहीं है। इसलिए कल वर्ष पूरा हुआ उसके बारे में सोचिए हम कितना आगे बढ़े। या कोहलू के माफिक घूमते रहे। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बाबा हर एक बच्चे के अंदर पुरुषार्थ में प्रोग्रेस चाहते हैं। और इसके आधार पर क्या होगा? हर जोन अपने जोन को निर्विघ्न बनावे, अपने सेंटर को नहीं अपने जोन को भी निर्विघ्न बनावे। और इसलिए क्या करे, हर जोन में नक्की करे कि हमारे जोन में कोई भी पुरुषार्थ में कमजोर न रह जाए। और फिर से बाबा ने कहा क्या लक्ष्य रखना है? अपने आप को निर्विघ्न बना करके हम निर्विघ्नता का वायुमंडल विश्व में फैलाना है और उसी से ही सारा विश्व में परिवर्तन होगा। इसी से ही सारे विश्व में परिवर्तन होगा। फिर दूसरी बात बाबा ने वही बात नया तरीके से अपनी चाहना रखी। इस वर्ष पुरुषार्थ में चारों ओर सब तरफ नंबर 1 हो। क्या हो? नंबर 1 हो और सभी 1-2 के सहयोगी बन, ऐसे रिजल्ट निकालो, एक दूसरे को मदद करो नंबर 1 बनने में। कंपटीशन नहीं परंतु कॉम्प्लीमेंट्री, सहयोगी बनो, वो बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा नंबर 1 बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर आप हर एक जो निर्विघ्न है नंबर 1 पुरस्कार थे क्योंकि आपका वाइब्रेशन दुनिया तक जाए। आप लोग अगर पुरुषार्थ में आगे जाएंगे तो उसका वाइब्रेशन दुनिया के दुखी लोगों तक पहुंचेगा। आजकल तो कितना दुख बढ़ रहा है, कारण ही ऐसे बनते हैं जो दुख ही दुख फैल जाता है। दुख के अंदर मददगार बनने का, दुख का दूर करने का ज्ञान नहीं देने का, परंतु दुख के अंदर दूर करने के लिए सहयोगी बनने का, उसका रास्ता बताने का। इससे क्या होगा? उनका दुख दूर होगा। तो इस प्रकार से बाबा ने कल हम सच्चों को बताई, बातें बताई है। और फिर हम 3 भाइयों के भी बाबा ने कहा कि मधुबन सदा ही निर्विघ्न रहे, सब संतुष्ट रहे, संतुष्ट भी रहे और त्यागी भी रहे। इस प्रकार से बाबा ने हम भाइयों को भी कहा। फिर बाबा ने यादगार जो दिया वार्षिक वर्ष के आखिर में नए वर्ष की बधाई देने के टाइम पर कि मुबारक हो। हाँ, कुछ नवीनता अपने में लानी है। अभी तक जो परिवर्तन नहीं किया है मुश्किल लगता था, वह इस वर्ष करके दिखाना है। तो इस प्रकार से कल की मुरली है। अब फिर से मैं आप सबको कह रहा हूं कि नए दृष्टिकोण के आधार पर कि मुझे अनुभव कराना है, प्रयोग करने हैं, संतुष्टता के प्रयोग करने हैं, संतुष्टता के अनुभव करने हैं। इस प्रकार से अनुभव करने के लिए अनुभवात्मक और प्रयोगात्मक एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटल ओरिएंटेड गॉडली सर्विस करनी है, ये आज से नक्की करके जाइए। और आप अनुभव करेंगे कि संदेश देने का रिजल्ट क्या रहा और अनुभव कराने का रिजल्ट क्या रहा, दोनों के अंदर के बीच में जमीन आसमान का फर्क है वो आपको मालूम पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रदर्शन नहीं बंद करने के, कॉन्फ्रेंस नहीं करने के, ये करने का, पर अभी उसके अंदर भी अनुभव कराने की शक्ति का बल भरने का है। अनुभव कराओ तो क्या हो जाएंगे, बाबा ने कहा दुनिया निर्विघ्न बन जाएंगे, आप भी निर्विघ्न बनेंगे। तो इसलिए बाबा ने कल सरल रास्ता दिखाया और इसके लिए सुबह योग के अंदर चार प्रातः रास्ते योग में वरदान भी दिया बाबा ने। और दुनिया के अंदर रहते हुए भी अगर समस्या आ जाए, मन से बाबा के पास पहुंच जाओ, बाबा से शक्ति लो और कोई भी समस्या आए उस समस्या का आप समाधान कर सकते हो। ये तीन बातें बाबा ने कही है, सोचना इसके ऊपर। मैंने जो आपको बताया समाधान स्वरूप बनने के बाद जो बताई बाबा ने, कहा प्रयोग करने के लिए कहा हुआ है, वो कहाँ तक हम कर सकते हैं और कहाँ तक इसके आधार पर ईश्वरीय सेवा में क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे होगा। यह क्रांतिकारी परिवर्तन करने की जिम्मेवारी अभी हमारे हाथों में है। बाबा ने तो साधन दे दिया। इस साधन के आधार पर साधना करने की जिम्मेवारी हमारी है। और एक लास्ट में कह दूं, बाबा का महावाक्य है, सबके लिए है। बाबा ने कहा है जो करेगा सो पाएगा। अब तक मैसेज संदेश देने की सेवा किया उसका वो फल पाएगा, अब हम अनुभव करना और कराने का, प्रयोग करने का और कराने की सेवा करेंगे तो उसका फल हम पाएंगे। आप ही अनुभव करके देखो। अब अंग्रेजी में कहते हैं प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग इट। दोनों के बीच में मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस और एक्सपीरियंस ओरिएंटेड गॉडली सर्विस में फर्क क्या है उसका आप अनुभव खुद करके देखो। मैं क्या बताऊं आपको, आप खुद अनुभव करके देखो और आपके अनुभव के आधार पर हमको बताना कि रमेश भाई आपने सही बात कही थी, हमने अनुभव कराया किया और इसके कारण ये रिजल्ट रही। पहले हम संदेश देते थे इसका ये रिजल्ट है और इसका ये रिजल्ट है, सोने का सोना और पित्तल का पित्तल आपको मालूम पड़ जाएगा। इसलिए आप सोचिए करिए। और फिर से मैं कहता हूं जो करेगा सो पाएगा। और दूसरा भी बाबा का महावाक्य है, हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। तो इसलिए हिम्मत रख करके करिए कि हमको संतुष्ट मणि बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है औरों को भी संतुष्ट मणि अनुभव कराने की सेवा के आधार पर बना रहा है। और दुनिया के अंदर के दुख अशांति जो है उसको हमें दूर करना ही है। सोचना जो करेगा, हमारी तो फर्ज है आपको बताने के लिए फल की मुरली के आधार पर कि इस प्रकार से संतुष्ट मणि बनो, अनुभव करो, कराओ, प्रयोग करो, प्रयोग करा करके प्राप्ति कराओ तो क्या हो जाएगा, नंबर वन हमारा जीवन हो सकता है। और इसलिए जैसे कल परसों जो चीफ मिनिस्टर आए थे उसने कहा सर्वे सुखी ना बंतु सर्वे सुखी संतु निराम राय मया है था, सब सुखी बने सर्व का जीवन संतुष्ट हो आदि आदि जो बात कही है शास्त्रों में। इस प्रकार से हम भी इस प्रकार का कारोबार करें और नए विश्व के अंदर श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का अधिकार हम बाप दादा से ले लेवे और श्रेष्ठ जीवन बने, श्रेष्ठ भविष्य बने, ये हमारी तकदीर बनाने का हमारे हाथों में है, वो हम करें। ओम शांति। हाँ फिर भी सोचना इसके ऊपर और किसी को भी पूछना करना हो तो हमसे मिल सकते हैं। बाकी मैंने आपको कहा ना कि हमारे यहाँ क्लासेस होने चाहिए, कि अनुभव कराने की सेवा क्या हो सकती है, प्रयोग संदेश देने की सेवा का तो हम सब प्रयोग करके देखे हैं, अब अनुभव करने की सेवा के क्या साधन होने चाहिए और उसकी साधना क्या होनी चाहिए वो यहाँ हमको सिखानी चाहिए। हमारे यहाँ के जो मुख्य भाई बहन है उनका अनुरोध है कि ये साधन और साधना अनुभव करने की और कराने की साधना का आपको ज्ञान देवे और आपको इसमें एक्सपर्ट बनावे। ओम शांति।
आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अनुभव से हम बहुत लाभान्वित हुए। अभी सतीश भाई और रमेश भाई हम सबके सामने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे।
संतान हम संतोष मणिया, हमको मिला वरदान हम संतोष मणिया, हम संतोष मणिया, हम संतोष मणिया। नया साल मुबारक हो, नए युग की बधाई हो, नया साल मुबारक हो, नए युग की बधाई हो। संगम की सारी खुशियाँ हर पल में समाई हो। भगवान की संतान हम संतुष्ट मणिया, जन ना सुलझे घर में पहेली ना बूझे, ओ कोई उलझन ना सुलझे घर पहेली ना बूझे। हमसे आकर के पूछे राह कोई जब ना सूझे, करते समस्या समाधान हम संतुष्ट मणिया। भगवान की संतान हम संतुष्ट मणिया, हम संतुष्ट मणिया। हमें बाबा ने भर दी ऐसी अनोखी है शक्ति, ओ हमें बाबा ने भर दी ऐसी अनोखी है शक्ति। दिया हमें संतोष का धन संतुष्टता की है शक्ति। अब कोई नारमान हम संतुष्ट मणिया, भगवान की संतान हम संतुष्ट मणिया, हम संतुष्ट मणिया, संतुष्ट मणिया, संतुष्ट मणिया। तेरा वर्ष मनाए हम तेरा, मिटान जग का अंधेरा स्वर्ण युग लाए सुनेरा। करते जग कल्याण हम संतुष्ट मणिया, भगवान की संतान हम संतुष्ट मणिया, हम संतुष्ट मणिया। हमको मिला वरदान हम संतुष्ट मणिया, हम संतुष्ट मणिया। नया साल मुबारक हो, नए युग की बधाई हो, नया साल मुबारक हो, नए युग की बधाई हो, संगम की सारी खुशियाँ हर पल में समाई हो। भगवान की संतान हम संतुष्ट मैया, हमको मिला वरदान हम संतुष्ट मैया। भगवान की संतान हम संतुष्ट मैया, हम संतुष्ट मैया, हमको मिला वरदान हम संतुष्ट मैया, हम संतुष्ट मैया, हम संतुष्ट मैया, हम संतुष्ट मैया।